नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौर। 5 अप्रैल 2024 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, गाजा में आम नागरिकों मानवीय सहायता कर्मियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं। यूएन महासचिव ने बेरोकटोक सहायता आपूर्ति और इजरायली सैन्य तौर तरीकों में बदलाव की लगाई पुकार। यूक्रेन में हिंसक टकराव से पीड़ित आम लोगों के उत्पीड़न और दमन पर चिंता। सैन्य तख्तापलट के बाद उपजे संकट से जूझ रहे म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सेवाएं जारी रखने का जताया संकल्प। और लाखों लोगों के लिए बड़ा खतरा है बारूदी सुरंगें, उनके सफाई के लिए यूएन के सक्रिय प्रयास। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। गाजा पट्टी में लड़ाई के दौरान आम नागरिकों को हताहत होने से बचाने के लिए इसराइल को अपने सैन्य तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। साथ ही जरूरतमंद आबादी के लिए जीवन रक्षक मानवीय सहायता की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जानी होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व में हुए जघन्य आतंकी हमलों के बाद ये लड़ाई शुरू हुई, जिसे 6 महीने पूरे हो रहे हैं। फलस्तीनी चरमपंथियों ने जिस तरह से उन भयावह घटनाओं को अंजाम दिया, उन्हें किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, और न ही इसके बाद इजरायली कार्रवाई में फलस्तीनी आबादी को सामूहिक तौर पर दंडित किए जाने को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है। गाजा में अब तक 32,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं।
More than half the population, over 1 million people, are facing catastrophic hunger. Children in Gaza today are dying for lack of food and water. This is incomprehensible and entirely avoidable.
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि आधी से अधिक आबादी, 10 लाख से अधिक लोग विनाशकारी स्तर पर भूख का सामना कर रहे हैं। भोजन और पानी की किल्लत से बच्चों की मौत हो रही है। ये समझ से परे है और इससे पूरी तरह बचा जा सकता है। यूएन प्रमुख ने कुछ दिन पहले इजरायली बमबारी में मानवीय सहायता संगठन वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कर्मचारियों के मारे जाने पर गहरा क्षोभ प्रकट किया। इस हमले के बाद मानवीय सहायता कर्मियों ने सुरक्षा खतरों की वजह से अपने रात्रि सहायता अभियान 48 घंटों के लिए स्थगित कर दिए थे, जिन्हें अब फिर शुरू कर दिया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की आपदा राहत समन्वय एजेंसी ने कहा है कि इजरायली सेना की जांच में पाया गया है कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर हमला एक गंभीर गलती थी और वो गलत पहचान के कारण हुई। इस बीच जिनीवा स्थित मानवाधिकार परिषद ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें गाजा में भुखमरी जैसे हालात को कथित रूप से युद्ध के एक तौर तरीके के रूप में इस्तेमाल किए जाने की निंदा की गई है। साथ ही इसराइल को हथियार बेचे जाने पर पाबंदी की भी मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने यूक्रेन में जारी युद्ध और उस पर कब्जे को खत्म करने का आग्रह किया है। उनके अनुसार रूस के आक्रमण की वजह से बने गहरे जख्मों और पीड़ादायी दरारों को भरने के लिए ये जरूरी है। यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने इस सप्ताह जिनीवा स्थित मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद 2 वर्षों के दौरान हर दिन हृदय विदारक घटनाएं देखने को मिली हैं। उन्होंने चिंता जताई कि दुनिया इस संकट के लिए उदासीन हो गई है। वोल्कर टर्क ने ध्यान दिलाया कि यूक्रेन में रूसी आक्रमण के 2 वर्षों में 10,500 से अधिक लोग मारे गए हैं और 20,000 से अधिक घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हताहतों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होने की आशंका है। वोल्कर टर्क के अनुसार यूक्रेन में मानवीय त्रासदी बहुत लंबे समय तक चली है। इस क्रम में उन्होंने रूसी महासंघ से लड़ाई पर विराम लगाए जाने की अपनी पुकार फिर दोहराई। म्यांमार में सेना द्वारा फरवरी 2021 में सत्ता पर कब्जा किए जाने के बाद भड़का तनाव और संकट पूरे देश में लोगों को गहराई से प्रभावित कर रहा है और ये संकट क्षेत्र में भी फैल जाने का जोखिम है। संयुक्त राष्ट्र के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सप्ताह सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों को संबोधित करते हुए ये बात कही। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
सहायक महासचिव खालिद खैरी ने म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए देश में मौजूद रहकर लोगों की मदद करते रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने और अधिक अंतर्राष्ट्रीय एकता व समर्थन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय संगठन आसियान व अन्य क्षेत्रीय हितधारकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। खालिद खैरी ने सुरक्षा परिषद में कहा,
The expansion of armed conflict throughout the country has deprived communities of basic needs and access to essential services.
पूरे देश भर में लड़ाई के फैलाव ने समुदायों को बुनियादी चीजों और जरूरी सेवाओं तक पहुंच से वंचित कर दिया है। इस संकट का लोगों के मानवाधिकारों और बुनियादी आजादियों पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। सशस्त्र बलों द्वारा अंधाधुंध हवाई बमबारी और विभिन्न पक्षों द्वारा गोलाबारी किए जाने की खबरों के बीच हताहत होने वाले आम लोगों की संख्या बढ़ रही है। सहायक महासचिव खालिद खैरी के शब्द। उन्होंने राखीन प्रांत की स्थिति के बारे में भी जानकारी मुहैया कराई, जो कि म्यांमार में सबसे निर्धन क्षेत्र है और इसी प्रांत में अधिकतर रोहिंग्या आबादी है। इनमें अधिकतर लोग मुसलमान हैं और उन्हें म्यांमार की नागरिकता से वंचित रखा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में रोहिंग्या लोगों पर सरकारी बलों द्वारा व्यापक दमन के बाद 10 लाख से अधिक रोहिंग्या लोग पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेने के लिए पहुंचे थे।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता और कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कहा है कि बिना विस्फोट के बिखरी हुई युद्ध सामग्री से लोगों को हमेशा के लिए मुक्ति दिलानी होगी। उन्होंने आगाह किया कि युद्ध से बदहाल हो चुके और हिंसा से उबर रहे समुदायों का दैनिक जीवन इन विस्फोटक अवशेषों से प्रभावित होता है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
हर वर्ष 4 अप्रैल को बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता व कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष आयोजित कार्यक्रमों में हिंसक टकराव में फंसे विकलांगजन की जरूरतों और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक अनुमान के अनुसार औसतन हर एक घंटे में कोई एक व्यक्ति किसी विस्फोटक सामग्री की चपेट में आने से हताहत होता है। इनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। बारूदी सुरंगों, विस्फोटक सामग्री और युद्ध के बाद बिखरे हुए आयुध अवशेषों से उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए खतरा उपजता है जो दुनिया भर में सशस्त्र टकरावों में फंसे हुए हैं। इनमें महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए जोखिम उत्पन्न होता है और महत्वपूर्ण मानवतावादी व विकास सहायता का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। लाखों बारूदी सुरंगें नष्ट की गई हैं और हजारों वर्ग किलोमीटर की भूमि को सुरक्षित बनाया गया है, मगर अभी भी लाखों सुरंगें बिछी हैं, जो कि एक बड़ा खतरा है। यूएन प्रमुख के अनुसार बारूदी सुरंग की चुनौती से निपटने में जुटे संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी साहस का परिचय देते हुए साझेदार संगठनों के साथ मिलकर इन जानलेवा हथियारों के सफाई के लिए प्रयासरत हैं। यूएन महासचिव ने अपने संदेश में सदस्य देशों से यूएन बारूदी सुरंग कार्रवाई रणनीति को समर्थन देने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने क्लस्टर आयुध सामग्री और चंद पारंपरिक हथियारों पर संधि पर मोहर लगाने और उसे पूर्ण रूप से लागू किए जाने का आग्रह किया।
हैजा बीमारी पर काबू पाने पर केंद्रित एक संयुक्त राष्ट्र पहल के तहत 14 देशों में 12 लाख से अधिक परीक्षण किट रवाना की गई हैं, ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी का पता लगाया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हैजा के परीक्षण के लिए पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में रैपिड टेस्ट किट को प्रभावित देशों में भेजा गया है। 2021 के बाद से ही विश्व भर में हैजा के मामलों में वृद्धि हुई है और मृतकों की संख्या में भी उछाल आया है। आगामी दिनों में ये रैपिड टेस्ट किट इथियोपिया, सोमालिया, सीरिया, मलावी समेत अन्य देशों में पहुंचेंगी, जहां हैजा फैलने का जोखिम अधिक है। इसके जरिए बीमारी का पता लगाना, उसके प्रकोप की निगरानी करना और टीकाकरण अभियान के असर को आंकना संभव होगा। पीने के लिए सुरक्षित जल उपलब्ध ना होने और साफ सफाई की किल्लत की वजह से ये बीमारी फैलती है और प्रभावित समुदायों के पास अक्सर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार जलवायु संबंधी कारणों, हिंसक टकरावों और आबादी के विस्थापन से हैजा की चुनौती और भी गंभीर रूप धारण कर रही है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।